सुरासुरमनुषदन्दबन्दिदम् घोयिघायिकम् विमलम् प्रणमामि बद्धमानम् तीर्थम् धम्मस्य कर्तारम्। वचन सार परमागम का, गे तत्व प्रज्ञापन का सामान्य अधिकार चल रहा है, जिसमें विस्तार से चर्चा होने के बाद आज सामान्य गे अधिकार को अपन समापन करेंगे। निकालो 250 पेज पर 122वीं का था। बात पीछे से ऐसी चली आ रही है कि ये जो मनुष्यादि पर्याय हैं, जिनमें एकत्व बुद्धि का नाम पर्याय मूढ़ता है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, और विशेषकर इन्हीं को क्यों लिया गया है, क्योंकि इन्हीं में एकत्व बुद्धि अनादि से इस जीव की प्रकट रूप से विद्यमान दिखाई देती है। तो बात कहां तक आ गई है कि ये जो मनुष्यादि पर्याय हैं, ये हमारे आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये उनका फल है। कल एक कहा था भाई ऐसे नहीं आ गई हैं कि उनके फल में हमको प्राप्त हुई है। कहा था ना कल, उससे कर्म हुआ, कर्म से नो कर्म हुआ है? अब आज ये कह रहे हैं कि आज का जो प्रकरण है पूरा अंत तक, वो इस बात पर वजन देने वाला है कि जो हमारी ये वर्तमान में मनुष्यादि पर्याय रूप दशा हो रही है, जिसे हम दुर्दशा कहें, जो कुछ भी कहना हो कहें, वो दुर्दशा के पूरे जिम्मेवार हम ही हैं। उसके कर्ता कर्म करण सब हम ही हैं, और इसका अभाव करके जो मोक्ष पर्याय प्रकट होगी, उसके कर्ता धर्ता भी हम ही होंगे। इसमें किसी कर्म फर्म का दोष नहीं है, किसी परद्रव्य का दोष नहीं है, और परद्रव्य के नाम पर दोष मरकर हम अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहें तो ये बात सही नहीं है। देखो ये जो अपन गा प्रथम तो आत्मा का परिणाम वास्तव में स्वयं आत्मा ही है। इस समय सार की शैली से कुछ अलग जुदी शैली है। समय सार कहते आत्मा का परिणाम आत्मा ही है, वहां तो कहते हैं परिणाम माने पर्याय से पृथक आत्मा, और यहां पर्याय को ऐसा नहीं कि पर्याय जब एक है, बगैर पर्याय ही आत्मा लगा ना, आत्मा ही है, क्योंकि परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणाम से अनन्य है। मैंने पर्याय से द्रव्य अनन्य है, ये इसकी चर्चा है यहां। और जो उसका तथाविद परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, वो पुद्गल नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्यों की परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता से स्वीकार की गई है कि प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन होता है वह उस द्रव्य का ही होता है, वो द्रव्य ही है, ये स्वीकार किया गया है। और फिर जो जीवमयी क्रिया है वह आत्मा के द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्त होने से कर्म है, इसलिए परमार्थता आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव कर्म का ही करता है। देखो एक तो परमार्थता लगा है और भाव कर्म का और ही लगा है। निश्चय से भगवान आत्मा भाव कर्म का करता है, और जो चार प्रकार का निश्चय नय है ना, उसमें एक अशुद्ध निश्चय नय नाम का नय भी है, जिसमें बहुत स्पष्ट राग आदि का कर्ता भगवान आत्मा अशुद्ध निश्चय नय से है ना, किंतु पुद्गल परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का नहीं, माने द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है और भाव कर्म का करता है। पर ये बात नहीं है कि समय सार में ये बात हुए ही नहीं, समय सार में भी ये बात है। ये नाटक समय सार में जो अनुवाद किया गया है आत्मख्याति के कलशों का, उसमें ये आता नहीं कि ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे यूं निश्चय परवान। तो ये निश्चय नय का कथन है ना कि ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी आत्मा है, मन सम्मन ज्ञान चातन रूप प्रणमन का कर्ता ज्ञानी आत्मा है, और अज्ञानी अज्ञान और मोह राग द्वेष रूप अज्ञान भावों का कर्ता अज्ञानी आत्मा है, तो आत्मा ही हुआ ना, और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है। और ये बात व्यवहार की नहीं है, यूं निश्चय परवान, ये निश्चय की बात है। ये ऐसा एकदम लिखा उसमें। अब यहां ऐसा प्रश्न होता है कि जीव भाव कर्म का कर्ता है तब फिर द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है, ऐसा तो प्रश्न ही खड़ा नहीं किया कि भाव कर्म का कर्ता नहीं है, कैसे नहीं है, क्या उसमें है ना। इसका उत्तर इस प्रकार है कि प्रथम तो पुद्गल का परिणाम वास्तव में पुद्गल ही है, क्योंकि परिणाम ही परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणाम से अनन्य है, और जो उसका तथाविद परिणाम है वह पुद्गलमय ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्यों की परिणाम स्वरूप क्रिया निर्मय होती है, ऐसा स्वीकार किया गया है। और फिर जो पुद्गलमयी क्रिया है वह पुद्गल के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त होने से कर्म है, इसलिए परमार्थता पुद्गल अपने परिणाम स्वरूप उस द्रव्य कर्म का ही करता है, किंतु आत्मा के परिणाम स्वरूप भाव कर्म का करता नहीं। तो वो भाव कर्म के कर्ता कर्म के नामे मत दो आप, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म हुआ, और अपन आजाद हो जाओ कि हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। तो पीछे गाथाएं निकल गई समय सार में आई ना, कर्म ही सुलावे कर्म ही जगावे, परघात नामक कर्म से हिंसा हो गई, वेद कर्म के उदय से विचार हो गया, तो ऐसे तो महा अनर्थ हो जाएगा कि नहीं। मैं ये बात समय सार की याद दिला के इसलिए कहना चाहता हूं कि अकेले प्रचन सार की बात ही नहीं है, समय सार में भी है, बहुत से लोग ये तो प्रचन सार की बात है, प्रचन सार की बात है ऐसा कह के उसे उड़ा देना चाहते हैं, जैसे प्रचन सार की बात तो सच्ची हो, सच्ची होती ही नहीं ऐसी। अब देखो यहां से वो इस लाइन को पकड़ते हैं इसके बाद के, जब वो राग का भाव कर्म का कर्ता आत्मा हुआ ना, तो कहते चेतन आत्मा तो चेतन है, तो वो तो चेतन भाव का कर्ता होना चाहिए, तो वो कहते भाव कर्म भी चेतन है, और इसलिए चेतना तीन प्रकार की होती है, एक ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। देखो इसमें बहुत नया प्रमेय है, बहुत मार्मिक बातें हैं इस प्रकरण में। यहां ज्ञान चेतना क्या है कि अपना जो ज्ञान स्वभाव है उसके प्रति आत्मा का चेतना, आत्मा चेते उसके कर्तृत्व के प्रति, उसके समझे ना, उसके प्रति जो आत्मा की चेतना है, आत्मा जो चेतता है उसका नाम है ज्ञान चेतना। और कर्म चेतना क्या है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना इसको अपने शास्त्रों में अज्ञान चेतना कहा है, माने मूल में चेतना दो प्रकार की है, ज्ञान चेतना एक अज्ञान चेतना। तो कहते एक कर्म और कर्म फल चेतना के रूप में दो तरह की है। तो एक कर्म चेतना क्या है कि लोगों को ऐसा रहता है ना, करूं 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 करूं, तो करने करने की जो विकल्प, करने करने के प्रति जो सतर्कता है, चेतनता है, उसका नाम कर्म चेतना, और उसका फल भोगने के प्रति जो चेतनता है, सतर्कता है, उसका नाम है कर्म फल चेतना। एक इंद्रियादिक में मुख्य रूप से कर्म फल चेतना की मुख्यता रहती है। जो जैसे कि अभी पेड़ है, अभी क्या करता है, करने का तो कुछ कुछ नहीं है, ठंडी हवा आई, गर्मी लगी, पानी मिला नहीं मिला, तो सुख दुख को भोगा ही करता है, मन उसे करने की अपेक्षा उसके भोगने में ही ज्यादा उसको रसता है, तो वो कर्म फल चेतना है, वो सबसे खोटी है। कर्म चेतना को तो गीता में धर्म कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, तो फल की मन कर्म फल चेतना में मत चेत, कर्म चेतना में चेत। जैन दर्शन उससे आगे कहता है कर्म और कर्म फल चेतना दोनों ही ठीक नहीं है, ज्ञान चेत, ख्याल में है ना। लेकिन वो कर्म चेतना तो कर्तव्य निष्ठ है आदमी, ये बहुत अच्छा है ऐसा माना जाता लोक में, कर्म फल चेतना को जो भोगों में ही मस्त है, ख्याल में है ना, उसको तो कोई अच्छा नहीं मानता है, तो आलसी प्रकृति का जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन हुआ बस उसको भोग लिया, तो कर्म फल चेतना की मुख्यता वाला है। वैसे तो हरेक में मुख्य और गौणता की बात है, किसी में कर्म चेतना की मुख्यता होती है और किसी में कर्म फल चेतना की मुख्यता होती है, अज्ञानियों की बात हो रही। जैसे बहुत सी माताओं बहनों को आप देखेंगे कि उन्हें खाना बनाने में जितना रस है उतना खाना खाने में रस नहीं है, बढ़िया बढ़िया घंटों तक बनाएंगी करके तैयार रखेंगी, फिर पति को पुत्र आदि को संतानों को खिलाएंगी, और वे जो खाएंगे तो बहुत उन्हें संतुष्टि होगी, अंत में बचा खुचा कुछ रहेंगी तो खा लेंगी, नहीं खाएंगी तो नहीं खाएंगी, नहीं बचेगा तो भी कोई गिला नहीं, खाने के प्रति उसमें उतनी सतर्कता नहीं है, जितनी बनाकर खिलाने में सतर्कता है, वो कर्म चेतना की प्रधानता वाली है। और कुछ लोगों को खाने में बनाने में महा आलसी, ये बहुत बढ़िया बना, ये बहुत बढ़िया बना, आज जैसा बना ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं तो आज उस शादी में गए थे जब वहां जो बना था, समझे ना। वो कर्म वो फलके में ही चेतते हैं, ख्याल में है ना, उसके प्रति उनकी सतर्कता ही नहीं होती है, क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो भोगने की प्रधानता वाले जीव होते हैं ऐसे। अब देखो, ये तो मैंने आपको सामान्य से ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का भाव बताया, लेकिन मैं खुद अमृतचंद की टीका पढ़ के आपको बताना चाहता हूं, और उसमें ऐसा मरम है कि जो आपकी बहुत खोटी मान्यताओं को दूर कर सकता है। देखो, एक गाथा जो 223 है, इसमें तो जो मैंने आपको बता दिया इन तीन चेतनाओं के नाम ही हैं। अब आप 124वीं जो गाथा है उसको अपन पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है जिसमें तीनों की परिभाषा दी है कि ज्ञान चेतना क्या है, कर्म चेतना क्या है और कर्मफल चेतना क्या है। प्रथम तो ये देखो 253 पेज पर सबसे नीचे की पंक्ति टीका की, प्रथम तो अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अब ज्ञान की परिभाषा देना, अर्थ विकल्प वह ज्ञान है, तो अर्थ क्या है फिर, तब अर्थ का विकल्प ज्ञान है तो अर्थ में अर्थ क्या, तो स्व और पर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व वह अर्थ है, सारी दुनिया वो अर्थ है, लेकिन स्व और पर का विभाग, क्योंकि भेद विज्ञान की मुख्यता वाली बात है ना, इसलिए कहते सारी दुनिया को दो भागों में बांटना, तो दो भाग कौन कौन से, एक का नाम स्व और एक का नाम पर, तो सारी दुनिया को स्व और पर के रूप में जानना ये ज्ञान है, ये कहना चाहते हैं वो। इसलिए कहते हैं कि अर्थ क्या है कि सारी दुनिया जो स्व और पर के रूप में विभाजित है, ऐसी सारी दुनिया वो अर्थ है, एक पॉइंट हुआ, और उसके आकारों का अभिभाषण उसका नाम विकल्प है। अरे विकल्प का बहुत चक्कर चलता है ना, विकल्प का निषेध, विकल्प का निषेध, ये भी एक ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है, इसका निषेध थोड़ी हो जाएगा, वो रागात्मक विकल्प का निषेध होता है। तो उसके आकारों का, किनके आकारों का, स्व और पर के रूप में विभक्त जो सारा जगत है, उस सारे जगत के आकारों का अभिभाषण उसका नाम है विकल्प, उसका नाम हो गया अर्थ विकल्प, और अर्थ विकल्प वो ज्ञान है। अब विकल्प है जैसे दर्पण के निज विस्तार की भांति, जैसे दर्पण के निज विस्तार में स्व और पर के आकार एक साथ ही प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जिसमें एक ही साथ स्व और पराकार अवभाषित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। यानी ज्ञान की यह शर्त है कि स्व और पर दोनों एक साथ मालूम पड़े। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं तो पहले दिनों से संघर्ष करते करते परेशान हूं, अपने ही मुमुक्षुओं में नजदीक के, तुम में आप में, कहीं आप दो पदार्थों का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता, दो पदार्थों का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता, बात नहीं जी से और किसी की नहीं बात करूं, दोनों समझा दे सुना दे परेशान क्या। अरे भाई वो जो शास्त्र में लिखा है कि छेपसम ज्ञान में दो पदार्थ एक साथ भाषित नहीं होते हैं, वो बहुत स्थूल कथन है। कैसा स्थूल कथन है कि जब मेरे आप सामने मेरे को दिखाई दे रहा है तब ये पीछे का दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपको दिख रही है उंगलियां कितनी है, दो है ना, तो दो दिख रहे हैं कि नहीं, तो एक साथ दो नहीं दिखते कहां से लाए, तो उंगलियां भी दो है ना, मुझे एक साथ दिख रहे हैं, आपके 200 विद्यार्थी यहां बैठे हैं सामने, नहीं दिख रहा है एक साथ, यदि एक साथ दिखना नहीं हो गए तो प्रमाण नाम का ज्ञान रहेगा ही नहीं। तो इसमें लिखा परिभाषा में संस्कृत में देख लो आप कि दोनों का एक साथ दिखना दर्पण की भांति, दर्पण में स्व और पर दोनों एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे हर ज्ञान में स्व और पर एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञानी के ज्ञान में और अज्ञान में। और इसी आधार पर तो उन्होंने कहा है 18वीं गाथा में कि आबाल गोपाल को भगवान स्वरूप अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रतिक्षण अनुभव में आ रहा है, तो प्रतिक्षण वो अनुभव में आ रहा है तो पर नहीं आ रहा होगा जानने में, तो पर भी आ रहा है, स्व भी आ रहा है। अनुभूति के काल में भी, केवल ज्ञान होने के बाद भी, तपक श्रेणी में भी, दोनों का ज्ञान साथ में होता रहता है। कोई का ज्ञान किसी का विरोधी है ही नहीं। हमने पर को जानने में आ गया तो स्व जानने में नहीं आएगा, ऐसा विरोधी है ही नहीं। क्या जैसे पत्नी होती है ना, कहते मेरी है तो तेरी नहीं हो सकती है, लेकिन मां हो सकती है, जो मेरी है वो तेरी भी हो सकती है। पढ़ो इसमें अच्छी तरह से क्या लिखा है बाद में, जिसमें एक ही साथ स्व और पराकार अवभाषित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। देखो ज्ञान की परिभाषा, ये ज्ञान चेतना की बात कर रहे हैं, ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान में स्व और पर एक साथ प्रतिभाषित हो उसका नाम ज्ञान है। तो एक साथ एक साथ नहीं हो सकते, दो एक साथ नहीं जाने सकते, दो एक साथ नहीं जाने जा सकते, आत्मा और पर को एक साथ नहीं जान सकता, मगर पर को पर रूप जाना जाता है और आत्मा को आत्मा रूप जाना जाता है। ये मैं हूं ऐसा जाना जाता है आत्मा में। इसमें लिखा स्व पर के अभेद पूर्वक, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं ऐसे भेद पूर्वक जानना होता है, उसका नाम ज्ञान है भाई साहब। और ये कौन से प्रकरण में ये बात चल रही है? ज्ञान चेतना के बारे में चल रही है, ये अज्ञानियों की बात नहीं है। ये ज्ञान चेतना जिसे कहते हैं ये उसकी परिभाषा में चल रही है ये बात। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? घंटों समझाया मैंने लोगों को, विवाद में नहीं दिया। वो एक साथ तो जान नहीं सकते, एक साथ तो जान नहीं सकते। अरे वो तो ऐसा है कि जैसे कि अभी आप मैं समझा रहा हूं आपको और आप आपस में बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूं देखो भैया दो काम एक साथ नहीं होंगे, या तो बातें कर लो या फिर मेरी बात सुन लो। ऐसी स्थूल बात है वो, भी तुम मेरी बात सुन। मान ऐसा उपयोग को दूसरी जगह भटकाना और आत्मा, और ऐसे ये कहते हैं कि तुम्हें या तो भैया अंग्रेजी पढ़ लो या फिर धर्म पढ़ लो, क्या डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ लो या धर्म पढ़ लो, या धंधा कर लो या धर्म कर लो। आता है ना, दो ये काम नहीं हुए सयाने विषय भोग अरु मोक्षर जाने, दो मुह सुई सिया न कंथा, दो मग पंक्षी चले न पंथा, और दो ये काम नहीं होए सयाने और विषय भोग और मोक्ष भी जाने। और दो काम होते मैं बता दूंगा अभी आपको। चौथा गुण स्थान में धर्म है कि नहीं, पांचवें गुण स्थान में धर्म है कि नहीं, श्रावक धर्म है कि नहीं, तो वहां पर आत्मा का अनुभव है कि नहीं, ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं, बोलो, और वहां विषय भोग है कि नहीं, भूमिका के अनुसार। तो दो काम कैसे नहीं हो रहे उसमें? अब ये तो सामान्य उपदेश की बात है। और हाँ ये भी है कि जो लो अस्ते कर्म को विनाश नहीं सर्व था, तो लो अंतर आत्मा में धारा दो ए बरेनी है कि नहीं है? कि जब तक अष्ट कर्म का नाश नहीं हुआ है, जब तक अंतर आत्मा है, मैंने अरहंत भी ले लेना ऊपर, अष्ट कर्म के नाश वाले में ले लेना, अंतर आत्मा के धारा दो ए बरनी, क्या एक ज्ञान धारा एक शुभा शुभ कर्म धारा, दोनों एक साथ होती कि नहीं होती है? दो काम एक साथ कैसे नहीं होते? जैसे तो धर्म धर्म ही नहीं है क्यों? लेकिन प्रेरणा देने के लिए तो ग्रस्त दशा से सीधा मोक्ष नहीं होता है, केवल ज्ञान नहीं होगा, परिपूर्ण धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए कहते हैं भैया दो काम नहीं होंगे, तुम्हें दीक्षा लो, दीक्षा देने की प्रेरणा के लिए वो बात कहे तो कोई ऐसी उपदेश की भाषा में चले, लेकिन तत्व की भाषा में तो बात क्लियर आ जाएगी सामने कि ऐसी बात तो नहीं। चौथे गुण स्थान की भी भूमिका है, वो भी मोक्ष मार्ग वहां से आरंभ हो गया है, और पांचवें में आ रहा हूं, छठवें सातवें में भी यही है ना, छठवां सातवां छठवां सातवां, तो जब छठवें में आया तब वो संसार मार्गी और सातवें में गया मोक्ष मार्गी, ऐसा है कि शुभ भाव में तो है होगा, लेकिन तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति वहां विद्यमान है कि नहीं? तो वो तो परिणति में है, उपयोग में तो नहीं है, लेकिन परिणति पर्याय का नाम है, वो पर्याय में प्रकट है भाई साहब, वो गुप्त का नाम नहीं है, अंतर समझ में आया ना? इसलिए वो धर्मात्मा है और उसके ध्यान में बैठे हुए श्रावक से असंग गुणी निद्रा होती है कि नहीं होती है? तो कैसे होती है? उस स्वभाव से होती होगी, उसकी धर्म परिणति उससे ज्यादा है और वो पर्याय में विद्यमान है, उससे है वो। देखो अब इस तरह ज्ञान का अर्थ समझ में आया ना, स्वपराभासन उसका नाम अर्थ विकल्प है, स्व और पर दोनों का नाम अर्थ है, और अवभासन उसके आकार का अवलोकन उसका नाम है विकल्प, अब जो विकल्प कहते हैं, मैंने विकल्प नहीं चाहिए, विकल्प नहीं चाहिए, विकल्प नहीं चाहिए, विकल्प नहीं चाहिए, मैंने ज्ञान नहीं चाहिए, बोलो ये विकल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। वो जो निषेध है वो तो रागात्मक विकल्प का है कि ये स्वाह है और ये पर है। ऐसा जो ज्ञान में जानना हुआ तेरे को ये भी नहीं चाहिए, बोल इसका नाम विकल्प है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए है? क्यों? देखो एक ज्ञान में होना दो प्रकार का होता है कि एक तो उपयोग रूप होना और एक जो लब्धि में, तो लब्धि भी प्रगट पर्याय का नाम है। जैसे आपको तीन भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। अब आप हिंदी में बोल रहे तो आपके साथ अंग्रेजी का ज्ञान आप है कोई है कि नहीं है, तो उसे ज्ञान है बोलेंगे कि ज्ञान नहीं है बोलेंगे, बताओ। कि अभी तो हमारा हिंदी का उपयोग आ रहा, उपयोग तो हिंदी में है, उपयोग हिंदी में है तो संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान है कि नहीं? कि शक्ति, शक्ति रूप नहीं है, शक्ति रूप तो हमने केवल ज्ञान है, दुनिया में जितनी भाषाएं उन सबका ज्ञान है शक्ति रूप। तो ये तो लब्धि रूप माने प्रगट पर्याय में हमें ज्ञान है, अकेला हम उसका भी उपयोग नहीं कर रहे, वो ज्ञान तो विद्यमान है ही। तो ऐसे ही पर को जानते वक्त स्वा का ज्ञान विद्यमान है और स्वा को जानते वक्त पर का ज्ञान विद्यमान है। देखो एक बहुत मरम की बात कहता हूं, सम्मा दर्शन हुआ आत्मानुभूति के काल में, फिर उपयोग बाहर आ गया तो सम्मा दर्शन कायम है ना, तो उपयोग बाहर आते ही समय से खत्म हो जाता है, तो सम्मदर्शन से काय का नाम है, अनुभूति का नाम सम्मदर्शन होता तो अनुभूति खत्म होते ही सम्मदर्शन खत्म हो जाना था। तो वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनुभूति में ज्ञान का गेय बना था, उपयोग में आया था, वो उसमें श्रद्धा गुण ने जो अपनापन स्थापित कर लिया था, वो अपनापन अभी कायम है, इसलिए वो सम्मदर्शन कायम है। तो सम्यक ज्ञान कायम है क्या? हाँ। तो सम्यक ज्ञान क्यों कायम है? कि वो जो ज्ञान का गेय भगवान आत्मा बना था उपयोग में, वो भी अभी लब्धि ज्ञान में है, इसलिए वो लब्धि ज्ञान में से निकल जाएगा तो सम्यक ज्ञान खत्म हो जाएगा। लब्धि ज्ञान प्रगट ज्ञान की पर्याय का नाम है। जैसे मैंने बोला ना अंग्रेजी भाषा के समय में आपको हिंदी का ज्ञान है कि नहीं, तो ऐसे ही जब आप पर को जान रहे उस वक्त अपना आत्मा का ज्ञान तेरी लब्धि में विद्यमान है प्रकट रूप से, इसे सम्यक ज्ञान है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब ये सम्यक चरित्र क्या है? एक कसाय या दो कसाय, जितना भी जिसका अभाव हुआ हो, या तीन कसाय, मुनिराज भी हो ना बाहर में उपदेश दे रहे हो, तो जितने कसाय का अभाव रूप शुद्धि अंदर में हुई है चरित्र गुण में, उतना चरित्र विद्यमान है, इसलिए रत्नत्रय माने मोक्ष मार्ग विद्यमान है। जब भोग के काल में भी, लड़ाई के काल में भी यदि वो चक्रवर्ती हो लड़ाई कर रहा है ना, तो भी वो मोक्ष मार्ग विद्यमान है और उसकी बराबर वो निर्जरा हो रही है। और जहां जैसी असंख्य गुणी निर्जरा बताई ना, जो भी कौन सा वो है ना सावक सम्मा दृष्टि सावक वृतानंद वियोजक, उसके हिसाब से जिस भूमिका में है वो, अब वो प्रक्रिया वहां चालू है, उसका नाम धर्म है। इसलिए जो ज्ञान के दो, ऐसा मानते दो का एक साथ नहीं हो सकता है, इसका मतलब यह है कि जब हमने खाने पीने का ज्ञान किया तो उस वक्त हमको आत्मज्ञान गायब हो गया, ऐसा अर्थ हो गया। यानी मैं प्रयत्न कर रहा हूं तो मेरे अभी ये पढ़ रहा हूं, स्पीकर का ज्ञान और आप लोगों का ज्ञान हो रहा है, तो मेरा आत्मज्ञान गायब हो गया, मैं इस वक्त आत्मज्ञानी नहीं हूं। क्यों? ये क्या समझ है? मैं आत्मा को समझा रहा हूं तो मेरा उस वक्त उपयोग तो भाषा पर है ना, समझाने पर है कि नहीं कोमल चंद जी? आप पर है नहीं, तो मैं आत्मा, मेरे को आत्मज्ञान है कि नहीं? और नहीं है तो मैं समझा जा रहा हूं, और मैं आपको समझा रहा हूं तो वो आत्मज्ञान भी है और मैं समझा रहा हूं, और आपकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये भी मेरी समझ में आ रहा है, तो इसका भी ज्ञान मेरे को हो रहा कि नहीं? और इन दोनों ज्ञानों को एक साथ होने में क्या दिक्कत है? एक भूत दिमाग में से निकाल दो, एक समय एक ही का ज्ञान हो सकता है, इसलिए पर को जानेंगे तो स्वा नहीं जान पाएंगे, इसलिए वो स्वा को जानने के लिए पर का ज्ञान बाधक हो गया, इसलिए पर का ज्ञान बाधक, जो बाधक है वो तो शत्रु है, और उसको शत्रु, उस शत्रु की श्रेणी में नहीं करो, तेरा स्वभाव है भाई साहब। क्यों तो? देखो अभी आगे पढ़ता हूं, जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है, ज्ञान की बात हो गई, अब आत्मा के द्वारा किया जाता है वो कर्म है। प्रतिक्षण उस भाव रूप होता हुआ आत्मा वास्तव में किया जाने वाला जो भाव है वही आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से कर्म है, चाहे वो राग द्वेष रूप भाव हो और चाहे वो विद्रागता रूप भाव हो, ख्याल में है ना। और वह कर्म एक प्रकार का होने पर भी द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव के कारण और असद्भाव के कारण अनेक प्रकार का है। देखो क्या कहते हैं, वो यद्यपि वो कर्म तो एक ही प्रकार का है, लेकिन द्रव्य कर्म की उपाधि के सद्भाव और असद्भाव दोनों ही लिए और उसका तारतम्य, उस तारतम्य के वजह से उसमें बहुत कभी कम रहा, कभी जाना रहा, कभी बीत रखता, कभी रहा, कभी द्वेष, कभी द्वेष नहीं होना, और कभी कम द्वेष होना, कभी ज्यादा द्वेष होना, ऐसे उसमें असंख्य लोक प्रमाण भेद पड़ते हैं। उस कर्म के द्वारा उत्पन्न किया ये हो गया कर्म चेतना, वो सब कर्म चेतना है, और वो भाव कर्म मतलब भावों का कर्तृत्व वो कर्म चेतना है, और उस कर्म से उत्पन्न हुआ जाने वाला सुख दुख वो कर्म फल है। देखो कर्ता और भोक्ता, तो कर्म चेतना में कर्तापन की मुख्यता होती है और कर्म फल चेतना में भोक्तापन की है ना, तो सुख दुख पर उसको भोगता है वो। यहां द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण जो कर्म होता है उसका फल तो अनाकृत लक्षण प्रकृतिभूत सुख है। क्या कह रहे, द्रव्य कर्म की उपाधि का अभाव हुआ तो अनाकुल सुख प्रकट होगा, और द्रव्य कर्म की उपाधि का सद्भाव हुआ तो उसमें पुण्य पाप के उदय के अनुसार सुख दुख रूप सुख दुख होगा। ये सब ले लेना, ये सब कर्म फल चेतना है ना। इस प्रकार ज्ञान कर्म और कर्म फल का स्वरूप निश्चित हुआ। प्रभावात जिसमें, देखो पढ़ो और जरा स्पष्ट है, जिसमें स्व स्वरूप से और पर रूप से परस्पर में एक मेक हुए बिना स्पष्ट भिन्नता पूर्वक एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है। और ये ज्ञान चेतना वाला ज्ञान है भाई साहब, ये अज्ञान वाला ज्ञान नहीं है। कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है मोहनलाल जी, फिर लिखा सौ पर एक साथ अभासित हो उसका नाम ज्ञान है। तुम कहते हैं वो ज्ञान, फिर तो ज्ञान का स्वरूप ही नहीं। गुरुदेव बोलते हैं ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव ज्ञान, ज्ञान का स्वभाव सौ पर को एक साथ जानने का है भाई साहब। और तू कहता है कि एक साथ जानता नहीं ज्ञान, ज्ञान एक साथ जानते नहीं कि थे ज्ञान नहीं जानता, केवल ज्ञान जानता, तो थे ज्ञान ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान का लक्षण यह है स्वपराव भाषण, क्यों ज्ञान का लक्षण अर्थविकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण है, तो वो तो सम्यक ज्ञान रूप से उस ज्ञान में तो घटित होगा ही, वो मिथ्या ज्ञान में भी घटित होगा, वो पूरी ज्ञान पर्याय में निगोदिया से लेकर मुक्ति के ज्ञान पर्याय में घटित होगा, तब वो ज्ञान का लक्षण कहलाएगा, नहीं तो वो ज्ञान का लक्षण नहीं कहलाएगा। लिखा क्या नहीं लिखा, इसलिए तो जीव के द्वारा किया जाने वाला भाव वह कर्म है। उसके मुख्य दो रूप भेद हैं, निरुपाधिक स्वभाव शुद्ध भाव रूप कर्म और औपाधिक स्वभाव भाव रूप कर्म। ये बात अपन ने चर्चा कर ली है, वो आगे बढ़े। देखो फिर देखो 256 पेज पे, प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है। हमें तो परिणामी आत्मा ही नहीं है, आत्मा तो अपरिणामी है। देखें प्रथम तो आत्मा परिणाम स्वरूप ही है, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। देखा क्यों है, तुम्हारा देवेंद्र में आत्मा जी में है कि नहीं। तो एक अपने देवपुर का छपा नहीं, स्वर्ण की छपा है गुरुदेव के जमाने का, और कहीं भी जाके देख लो। जैसा कि 112वीं गाथा में भगवत कुंदकुंदाचार्य देव ने स्वयं कहा है, टीका में लिखते अमृतन कि मैं नहीं कह रहा हूं, कुंदकुंद ने स्वयं कहा है, तथा परिणाम चेतना स्वरूप होने से ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप होने से स्वभाव वाला है ना। अभी देखो सबसे नीचे की पंक्ति पढ़ो, इस प्रकार, अब इस प्रकार है कि नहीं, ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर आत्म तत्व की उपलब्धि होती है ना। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए एक द्रव्य सामान अधिकार का समापन करते हैं। अब क्या करें, बहुत मरम की बात है। एक चार गेपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता, एक गेपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता क्या कह रहे, कहना चाहते हैं। मानव शिष्य का ये प्रश्न है कि महाराज आप भूल गए कि एक गे तत्व प्रज्ञापन है, आप तो ज्ञान तत्व की बात करने लग गए, आप तो आत्मा की बात करने लग गए, और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार तो हो चुका है। एक से लेके 92वीं गाथा तक अन्ना जी, अब ये तो गेय तत्व है, तो तुम गेय की बात करो ना, ये आत्मा फात्मा कहां से आ गया तुम्हारा बीच में? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, ये तो सब आत्मा की बातें हैं ना, ये तो गेय का है। कम से कम गेय तत्व प्रज्ञापन में तो गेय की बात करना चाहिए ना। जैसे कि आज यहां मान लीजिए कि स्वामी जी की जयंती है, तो अपन स्वामी जी की महिमा गाएंगे, एक घंटे तक दो घंटे मीटिंग करेंगे। टोडरमल जी की जयंती है तो टोडरमल जी की महिमा गाएंगे, यही न्याय है कि नहीं है? पर आपको आपको पांच मिनट दिए बोलने के लिए, तो आपने आए खड़े होकर के कि टोडरमल जी बहुत महान विद्वान थे और गुरुदेव सिंह ने हमें टोडरमल जी का ज्ञान नहीं कराया होता तो हमें कुछ पता ही नहीं लगता, और फिर पूरा पांच मिनट गुरुदेव सिंह के गीत गाते रहे। बोलो बढ़िया, ठीक है कि गलत है? इस न्याय है कि अन्याय है? तुलकुंदाचार्य का हम वर्ष मना रहे 2000वां वर्ष पूरा, और स्वामी जी ने हमें यदि समय सार नहीं बताया होता, कुंड का परिचय नहीं कराया होता तो हमें पता नहीं चलता। तो पूरे वर्ष भर तक हम स्वामी जी का ये अभिनंदन करते रहे और कुंड का कोई नाम ही नहीं लें, तो उचित होगा कि अनुचित? तो ऐसा वो कह रहा शिष्य कि गे तत्व की बात है तो गे की बात करो ना तुम, ज्ञान 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 ज्ञान, हम ज्ञान ज्ञान सुनते हुए हमारा माथा खराब हो गया। तो वो कहते भैया हम गे की ही बात कर रहे हैं, ये आत्मा की जो बात कर रहे हैं वो आत्मा भी तो गे है ना, आत्मा गे है कि नहीं? वो जो हमने ज्ञान तत्व में बात की थी तो आत्मा के जानने वाले स्वभाव की बात की थी, और यहां जो हम बात कर रहे हैं वो आत्मा जानने में आता है उस स्वभाव की बात कर रहे हैं। तो लोग क्या लगा, गेपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता। ये जो हमने आत्मा की बात आपसे की है वो गे रूप आत्मा की बात की, तो इसलिए हमने कि तीन प्रकार की चेतना है, तो वो आत्मा गे है ना, तो गे माने एक वस्तु है ना, अर्थ है ना, वो अर्थ की परिभाषा दी थी ना, तो उसमें अर्थ की परिभाषा क्या थी कि स्व और पर के अवभाषण रूप, तो उसमें ये आत्मा जो गे है ये स्व है, ये स्वागे है और ये पर गे है। गे दो प्रकार के है ना, तो ये स्वगे की बात कर रहे हैं कि वो स्वगे कैसा है, कि वो ज्ञान चेतना वाला है, वो कर्म चेतना वाला है, वो कर्म फल चेतना वाला गे है, वो मनुष्य आदि पर्यायों में है, ख्याल में ना, वो कैसे संयोगों में है। तो एक गे तत्व को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर, क्योंकि वो ज्ञान तत्व की सिद्धि गे तत्व, तो कहते हैं ज्ञान तत्व तो बता रहे आत्मा जानन जानन स्वाभी जानन स्वाभी, तो अब हम क्या करें, वो आत्मा का स्वभाव यदि ज्ञान है तो वो गे आत्मा का गे रूप से वर्णन करेंगे तो आत्मा के ज्ञान स्वभाव की बात नहीं आएगी। ये पुद्गल है, पुद्गल भी ये गे है ना, तो उसका स्वभाव रूप स्कंध स्पर्श वाला है, तो हम उसकी बात करेंगे तो रूप स्कंध की चर्चा आएगी कि नहीं आएगी? आकाश का जो स्वभाव है उसकी चर्चा आएगी कि नहीं आएगी? तो आत्मा को गे पने से बात करेंगे तो आत्मा का जो स्वभाव है उसकी चर्चा क्यों नहीं आएगी? सुने ना, होने से आत्मा की लिखा ना उपलब्धि होती है, इस प्रकार उसका अभिनंदन करती है। अंत में हम कह रहे हैं कि इससे ज्ञान स्वभावी जो स्वगे है उसकी उपलब्धि इस गे तत्व के प्रज्ञापन से होगी, और इसी कारण से उन्होंने इसे सम्यक दर्शन अधिकार कहा। देखो अब गाथा पढ़ो, कत्ता करणम कम्मम यदि श्रमण कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा है। देखो कर्ता आत्मा, करण आत्मा, कर्म आत्मा और कर्म फल आत्मा, ये आत्मा के रूप है ना, मैंने ज्ञान चेतना वाला आत्मा, कर्म चेतना वाला आत्मा, कर्म फल चेतना वाला आत्मा, क्या लिखा है? ऐसा जो आत्मा, ऐसा निश्चय वाला, ऐसा निश्चित जिसने किया है, जिस श्रमण ने ये निश्चय किया है कि ये आत्मा ही ज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का कर्ता है, करण है, कर्म है, सब कुछ ये आत्मा के भीतर ही है, परद्रव्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा जिसने निर्णय किया है निश्चय वाला होता हुआ अन्य रूप परिणमित नहीं होता, माने रागा उसका द्रव कर्मों का कर्ता नहीं बनता, नौ कर्मों का कर्ता नहीं बनता, शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं बनता, इस सारी दुनिया का कर्ता भोक्ता नहीं बनता, उनके साथ कर्ता कर्म कारक का संबंध स्थापित नहीं करता, ऐसा आत्मा शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। देखा, शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है ना। अपानम लहदि शुद्धम। अभी टीका में बहुत विस्तार से खुलासा किया है, इसमें काफी समय लगेगा, चिंता नहीं करना, पूरा समय इसी में जाने वाला है। जो पुरुष इस प्रकार कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा ही है, ठीक है ना, यह निश्चय करके वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, वही पुरुष जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है और जिसकी पर्यायें द्रव्य के भीतर पिलीन हो गई हैं, पर्यायों को तो अंदर रखा, ये पर्यायों को बाहर निकालने वाला नहीं है क्या? तो वास्तव में पर्यायों को बाहर कहीं नहीं निकाला है, पर्यायों को गौण किया है, उसके भेद को निकाला है, उसके विकल्प को निकाला है। कि पर्यायों को कोई निकाल सकता है ऐसा? द्रव्य को एक समय के लिए भी कह सकता है पर्याय से रहे थो? तो अपन ने वो छठवीं सातवीं गाथा में जो समय अनुशीलन में लिखा है कि काल की अखंडता रखकर और फिर पर्याय निकाल दो, क्या काल की अखंडता रखकर पर्याय निकाल दो, तब वो द्रव्य में कालीन खंडयामी होगा। देखो क्या लिखा ना, पर्याय अंदर में क्या लिखा, कहां गया, विलीन हो गई है, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है, परंतु अन्य कोई ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं करता। अब इसी को स्पष्टतया समझाते हैं विस्तार से। देखो शुद्धात्मा का अर्थ क्या, देखो जब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म के बंधन रूप उपाधि की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग द्वारा जिसकी स्वपरिणति रंजित विकृत मलिन थी, ऐसा मैं जवा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग से जिसकी स्वपरिणति रंगित हुई है, ऐसे स्फटिक मणि की भांति पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से संसारी था, तब भी, देखो जब मैं था, आता रमचंद कह रहे हैं, तब भी अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं था। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया हूं तो अब मेरे स्त्री पुत्र मकान नादा द्रव कर्म भाव कर्म ये संसार मेरा कोई नहीं था। जब मैं इन सब को अपना मानता था तब भी ये कोई मेरे नहीं थे, ना मैं इनका कर्ता था, ना कर्ण था, ना कर्म था, ना कर्म फल भोगता था, समझिए ना, दूसरे की गलती का फल मैंने जिंदगी में आज तक नहीं भोगा, ऐसा कह रहे। जब मैं अज्ञानी था तब तो करता था, कहते कि मैंने बहुत किया साहब अपनी अज्ञान अवस्था में, अब जब से मैं आपके समागम में आया हूं तो मेरे ने सब काम बंद कर दिया है, अब तो मैं अकेला अपना आत्मा का करता हूं और कुछ नहीं करता हूं, पहले बहुत किया। तो तेरे को ऐसा आत्मज्ञान प्रकट हुआ है कि पहले तूने बहुत किया, क्यों कि आत्मा ने अनादि से पर मैं कुछ किया ही नहीं, उन दोनों के भीतर वज्र की दीवार खड़ी है, ये तेरे को ये ज्ञान हुआ है कि पहले किया था और अब नहीं करता हूं, तेरे को कौन सा ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ, कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ है, बोल। देखो तब भी मैं अकेला ही करता था, देखो जो भी मेरे में विकार हुआ मेरे में उसका, तब भी मैंने पर का कुछ नहीं किया, लेकिन अपने अंदर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेवार मैं था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य स्वभाव से स्वतंत्र था, अर्थात स्वाधीन दया करता था, किसी ने पराधीन होकर कर्म के उदय से मैंने किया ऐसा नहीं था, मैं अकेला ही कर्ण था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा साधकतम था, मैं अकेला ही कर्म था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यमय परिणति के होने के स्वभाव के कारण आत्मा को प्राप्त होने से कर्म था, और मैं अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला दुख नामक कर्म फल था, जो कि उपरक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है। यानी ये सब मैं ही था, मैंने ही किया था, कर्ता कर्म छह कारक अभिन्न छह कारक वो विकार के सब मेरे थे। वो कहते कल जब मैं अज्ञान अवस्था में था, ठीक है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे और अज्ञानी अज्ञान, अज्ञान भाव का कहता अज्ञानी को बता रहे कि नहीं बता रहे, अरे इतने नहीं माने देवेंद्र तो क्या होगा, तो संसार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि हम संसार में तो इसी वजह से तो है ना, यदि हम उसके कर्ता है ही नहीं तो उसके फल के भोगता हमें क्यों होना चाहिए, अनादिकाल से हम निगोद में है कि नहीं है, हम तो नहीं है ना, तो पर्याय निगोद तो पर्याय है, मोक्ष पर्याय है, जो व्यवहार से है निगोद मुगोद में तो हम बात सच्ची है, वो भी बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि निगोद में तुम एकत्र बुद्धि करेगा तो मिथ्या दर्शन नहीं होगा, सम्मा दर्शन होने वाला नहीं है, वो तो निगोद से लेकर मोक्ष तक की सब पर्यायों में से एकत्र बुद्धि तोड़कर त्रिकाली ध्रुव में एकत्र बुद्धि करेगा, सम्मा दर्शन तो तब ही होगा, लेकिन वो वेदांतियों जैसा उन जैसा नहीं है कि माया नहीं है, वो नरक निगोद भी असल में है, वो कोई कल्पना लोक की बात नहीं है। मैंने शायद बताया था ना कल परसों आपको कि जयसेनाचार्य ने कहा कि ऐसा करोगे तो तुझे तो हिंसा होगी, तो ये हिंसा तो व्यवहार से ही हुई ना, तो उन्होंने कहा हाँ व्यवहार से ही हुई, तो उन्होंने कहा और इसके फल में तुम नरक में भी व्यवहार से ही जाओगे, तो नरक में व्यवहार से जाओगे तो बोलो मैं आपसे पूछता हूं कि नरक में जाओगे कि नहीं जाओगे, झूठा तो नहीं जाओगे ऐसा अर्थ क्यों इसलिए तुम्हें यदि नरक में नहीं जाना हो तो तुम इसको व्यवहार हिंसा को भी छोड़ दो, ऐसा मैं आगे बोलता ना, जैसे मान लो राग है ये क्रिया है ये सब व्यवहार है समझे ना, लेकिन ये नरक स्वर्ग इसके फल में है कि नहीं है, चार गति और 84 लाख योनियां हैं कि नहीं है, अभी आगे ये आने वाला है, देखो अभी ये तो विकार के हुए, अब मोक्ष जाने की सुनो, और अब ये तो जब की बात थी जब मैं अज्ञानी था क्यों, और अब की बात सुनो कि अब क्या है, अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म के बंधन रूप उपाधि की निकटता के नाश से जिसकी सुबसिद्ध सहज स्वाभाविक स्वपरिणति प्रकट हुई है ऐसा मैं क्या कह, देखो तो कितना कितनी बात, ऐसा नहीं कहते ऐसा जीव, ऐसा जीव ऐसे थर्ड पर्सन की बात नहीं करते हैं, सीधी कहते मैं ऐसा मैं, जवा कुसुम की निकटता के नाश से जिसकी सुप्रसिद्ध से स्वप्रणति पैदा हुई है ऐसे स्फटिक मणि की भांति, वो जवा कुसुम समझते हो, एक फूल होता है और एक स्फटिक मणि होता है, तो स्फटिक मणि में जैसा फूल लगा दो पीछे वो सारा मणि वैसा दिखने लगता है, तो अब कहते हैं कि वो जवा कुसुम की डांक नहीं लगी है इसलिए जैसा निर्मल, अब मणि कैसा दिखता है, जैसा है जैसा उसका स्वभाव है वैसा दिखता है, तो जैसा उसका स्वभाव है वैसा दिखता है ना, और वैसा ही है ना, और जब जवा कुसुम की डांक लग गई थी तब दिखता था लाल, डांक लगी थी तो लाल, लेकिन उस वक्त भी था ऐसा ही जैसा अभी दिख रहा है, कि जैसा जब दिख रहा था वैसा नहीं था, ठीक है कि नहीं, फर्क हो गया ना, दिखता था जवा कुसुम की डांक के अनुरूप था जैसा अभी है, तो अभी और तब आत्मा तो एक सा ही था ना, ये उसकी अनन्यता है, पर के आरोपित विकार रुक गया है ऐसा होने से एकांतता मुमुक्षु है, मैं एकांतता मुमुक्षु हो गया हूं, अब अभी भी मैंने मुमुक्षु दशा में, अब अर्थात ज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है, न तब भी मेरा कोई नहीं था और अब भी मेरा कोई नहीं है, अभी भी मैं अकेला ही करता, जो भी परिणाम मेरे हैं उनका करता, क्योंकि मैं अकेला ही सुबसिद्ध चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र हूं, अर्थात स्वाधीनता करता हूं, मैं अकेला ही करण हूं, मैं अकेला ही सुबसिद्ध चैतन्य रूप स्वभाव से साधकतम हूं, मैं अकेला ही कर्म हूं, क्योंकि मैं अकेला ही सुबसिद्ध चैतन्य परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्त हूं, और मैं अकेला ही अनाकृत लक्षण वाला सुख नामक कर्म का फल हूं, जो कि सुबसिद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने से स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार देखो बंध मार्ग में और मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है, यह एकत्व भावना, फिर सर्ग नरक निगूद में जावे अकेला आत्मा, शिव माने मोक्ष, वो नर्क निगोद आ गया ना, शिव नर्क निगोद में जावे अकेला आत्मा। मैं बंद मार्ग में भी अकेला हूं, माने मैं अपने कार्यों का जिम्मेवार पूरा मैं ही हूं, और मोक्ष मार्ग में भी मेरे कार्यों का जिम्मेवार मैं हूं। यदि बंद मार्ग में मैं अपने कार्यों का जिम्मेवार नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग भी मेरे हाथ की बात नहीं रहेगी और मेरे कार्यों का फल नहीं होगा वो, है ना। देखो इस प्रकार बंद मार्ग तथा मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है, इस प्रकार भाने वाला वह पुरुष, ऐसी भावना वाला वह पुरुष परमाणु की भांति एकत्व भावना के उन्मुख होने से उसे परद्रव्य रूप परिणति किंचित नहीं होती, और परमाणु की भांति जैसे एकत्व स्वभाव से परिणमित परमाणु पर के साथ संको प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार एकत्व को भाने वाला पुरुष पर के साथ संपृक्त नहीं होता, इसलिए परद्रव्य के साथ असंबद्धता के कारण वह सुविसिद्ध होता है और कर्ता करण कर्म व कर्म फल की को आत्मा को रूप से भाता हुआ वह पुरुष पर्यायों से संकीर्ण नहीं होता, इसलिए पर्यायों के द्वारा संकीर्ण न होने से शुभ सिद्ध होता है। ये मुक्ति होने का उपाय है, ये गे तत्व प्रज्ञापन में है। ऐसा क्या कहते, पर्याय विकारी पर्यायों का कर्ता भी आत्मा था। अभी एक बात और मैं आपसे बोलता हूँ कि शिखर जी में ये चर्चा चली थी जब मैं गया था ना 5-6 साल पहले, बहुत चली थी कि राग का कर्ता आत्मा है कि नहीं है। तो वो तो नहीं 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 वाली धुन चलती है ना। तो मैंने ये बात समझाई तो वो तो प्रोत्संसार की बात है। चलो प्रोत्संसार की बात है, तो प्रोत्संसार कुंद कुंद कही है, अमृतचंद की टीका है, चलो वो चलो निपटा दे। मैं कहा समय सार में बताऊं, वो समय सार का निकाल के बताए, 35 गाथाएं कम से कम आप सुने ना। वो तो अज्ञान अवस्था, तो मैं कब कहता हूं अज्ञान अवस्था में ही अज्ञान का कर्ता होगा ना, तो ज्ञान अवस्था में अज्ञान का कर्ता कैसे होगा। क्यों, तो ज्ञान अवस्था में अज्ञान होगा ही नहीं इसलिए कर्ता नहीं होगा, होता तो कर्ता होता। मैं यह सुन सदना, मैं अभी क्या कहना चाहता हूं तो थोड़ी बारीक है इसमें, इतना 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 सरल नहीं जितना तुम हंस के टाल रहे हो। कि ये कहता हूं कि वो जो अज्ञान रूप मोह राग देश है, अनंतानबंदी राग है और मिथ्यात्व तो है जिसे अज्ञान भाव कहते हैं, वो तो वहां है ही नहीं ज्ञानी के, तो उसका कर्ता नहीं है। इस कहने में दम क्या है मुझे बताओ आप, कि जो चीज है नहीं उसका कर्ता नहीं है, वो हो तो उसका कर्ता है कि नहीं और वो नहीं है तो कौन है, तब समस्या खड़ी होती। ज्ञानी के ज्ञान भाव है वो ज्ञान भाव का कर्ता है, अज्ञानी के अज्ञान भाव है वो अज्ञान भाव का कर्ता है। इतनी सी तो बात है कि ज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है, तो ज्ञानी के अज्ञान भाव है कि नहीं है तो काहे का कर्ता होता। अब समस्या क्या है कि ज्ञानी के राग भाव है कि नहीं। अब राग भाव शब्द का प्रयोग एक अज्ञान भाव के रूप में भी होता है, जो अनंतानबंदी राग के अर्थ में भी होता है, मिथ्यात्व सहित राग के अर्थ में भी होता है, वो ही अज्ञान भाव के खाते में जाता है। वो जो संबंध स्त्री के राग होता है वो अज्ञान भाव के खाते में नहीं जाता, भले ही उसे ज्ञान भाव कहो नहीं कहो, चाहे तो की कमजोरी कहो, लेकिन उसे अज्ञान भाव भी नहीं कह सकते। तो उस राग का कर्ता है कि नहीं बोलो। अब उसमें यह है कि कर्तृत्व बुद्धि नहीं है इसलिए वो कर्ता नहीं है, माने अपने को कर्ता नहीं मानता है, एक अपेक्षा तो ये है, और एक ये है कि उसका कर्ता है, ये भी समय सार में भी है। जो सुनो अब क्यों है कि यदि उसका कर्ता कथनचित भी नहीं हो, सर्वथा नहीं हो मतलब, तो उनसे जिन प्रकृतियों का बंध है वो नहीं होना चाहिए। राधा सुने ना, वो जीव के साथ उन प्रकृतियों का बंध क्यों होता है, है? जब उनका कर्ता वो है ही नहीं बिल्कुल। जैसे मैं आपके राग का कर्ता नहीं हूं तो आपके राग के कारण मुझे कुछ कर्तव्यों का बंध नहीं होता है, और वो उन राग रूप परिणमित स्वयं हुआ कि नहीं हुआ तो ये भी अपेक्षा है एक। लेकिन वो जो कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, करने लायक मानता नहीं है, उसमें से उसने एकत्व बुद्धि तोड़ दी, ममत्व बुद्धि तोड़ दी, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि तोड़ दी, तो इस वजह से उसे अकर्ता कहा जाता है। दोनों अपेक्षाएं हैं वहां, समय सार में मुख्य अपेक्षा यही है कि बस नहीं है, वो कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, मानो है ही नहीं। तो उन्होंने ऐसा लिखा ना कि अशुद्ध निश्चय ऐसे तो कर्ता है ही, तो असत निश्चय नहीं तो अज्ञानी के घटित होता है, ज्ञानी के घटित ही नहीं होता, एक तरीके से राका। और फिर कहा कि परम शुद्ध निश्चय ऐसे है कि नहीं है, ऐसा देव संघ वगैरह में प्रश्न किया ना, तो उनने जवाब दिया परम शुद्ध निश्चय ऐसे वो राग ही नहीं है। राग नहीं है माने उत्तरकाली ध्रुव में नहीं है, ये मतलब ये है। जैसे हल्दी और चूना मिलकर के, हल्दी पीली और चूना सफेद, तो मिलकर लाल रंग हो गया, तो हल्दी हुई लाल के चूना हुआ लाल। तो ऐसा भी कह सकते कि हल्दी के संयोग से चूना लाल हो गया, ऐसा भी कहते चूना के संयोग से हल्दी लाल हो गई, ऐसा भी कहते दोनों मिलके लाल हो गए। और परम शुद्ध निश्चय से कि परम शुद्ध निश्चय कहते हैं कि हल्दी और चूना कभी मिलते ही नहीं, इसलिए कुछ होने का सवाल ही कहा। हल्दी अभी भी पीली है और चूना अभी भी सफेद है, वो मिलते ही नहीं। तो ऐसा कहते परम शुद्ध निश्चय से तो राग है ही नहीं, तो उसका कर्ता होने का सवाल कहां खड़ा होता है। तो ये प्रथम सार में सामान्य ज्ञान अधिकार ज्ञेय तत्व विज्ञापन में पहले उत्पाद व ध्रुव स्वरूपास्तित्व महासादृश्यस्तित्व महासत्ता अवान्तर सत्ता आदि सबका स्वरूप विस्तार से बताकर फिर उसे आत्मा पर घटित करके, फिर आत्मा का कर्ता कर्ण कर्म संप्रदान अपने पर ही घटित करके, और संसार मार्ग में भी वो स्वयं स्वाधीनतया उसने संसार का कर्ता था और मोक्ष मार्ग में भी स्वाधीनतया मुक्ति का कर्ता होगा, इस तरह इन्होंने सामान्य गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का समापन किया।